हरे कृष्ण। तो हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं भगवद गीता का प्राथमिक कोर्स, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। तो इसमें जैसा हमने लिखा है तो 6 दिन के अंदर अलग अलग टॉपिक्स लेकर के भगवद गीता का बिल्कुल प्राथमिक ज्ञान हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज का माहौल ऐसा है कि हर घर में हर व्यक्ति को चिंताएं सताती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति के मन में हमेशा ऐसे प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं कि आखिर ये सब क्या है, क्यों है, ये सब परेशानियां क्यों हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हम इन 6 दिनों के अंदर प्रयास करेंगे भगवद गीता के माध्यम से, जो कि अतुलनीय है, जिसकी और कोई तुलना नहीं है। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है पूरे संसार में पुराणतम, सर्वाधिक श्रद्धा प्राप्त किए सभी प्रकार के लोगों की, स्कॉलर्स, सामान्य जनता, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, रिलीजनिस्ट्स। तो ये भगवद गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में सभी स्वीकारते हैं। तो हम इन 6 दिनों में इस भगवद गीता को कैसे समझना है और क्या इसके अंदर आधारभूत ज्ञान है और कैसे वो हमें मदद कर सकता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा सत्र रहेगा उसमें हम पहले देखेंगे कि भगवद गीता को समझने का तरीका क्या है, क्योंकि भगवद गीता बहुत प्रचलित होने के कारण सभी लोग भगवद गीता का अध्ययन तो करते हैं, काफी लोग करते हैं, प्रवचन भी होते हैं, लेकिन उसके सार को समझ पाना, उसके रहस्य को समझ पाना, इसके लिए जरूरी है कि सही प्रोसेस से उसको समझा जाए। जैसे उदाहरण लें तो यदि हमें कोई दवाई खानी है, मेडिसिन, तो हमें दवाई खाने के लिए फॉलो करना चाहिए या तो उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ एडवाइस, या तो डॉक्टर जिसने वो प्रेस्क्राइब किया है उसकी एडवाइस। हम दवाई को अपने मन से या तो हमारे फ्रेंड जैसा कह रहा है वैसे नहीं ले सकते, जैसा डॉक्टर ने बताया है या जैसा उस दवाई के ऊपर लिखा है उस तरीके से हमें उस दवाई को लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से भगवद गीता को समझने का तरीका है, भगवद गीता का ज्ञान देने वाले भगवद गीता का ज्ञान देने वाले से सुनना कि इसका तरीका क्या है। हरे कृष्ण, कृपया ध्यान थोड़ा यहां रखें क्योंकि ये एक एक पॉइंट रिलेटेड है, एक भी मिस हो गया तो फिर आगे वाला पॉइंट में फिर थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो भगवद गीता को समझने के लिए बेस्ट प्रोसेस है कि हम भगवद गीता जिसने सुनाई है, जो उसका ऑथर है, उनसे सीखें कि क्या तरीका है। ही कैन एडवाइज अस बेस्ट। तो भगवद गीता सुनाई गई है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। तो श्री कृष्ण कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, जो इसके प्रवक्ता हैं भगवद गीता के ज्ञान के। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे शास्त्रों के द्वारा, वैदिक शास्त्रों के द्वारा, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम कंट्रोलर। भगवद गीता के हर पन्ने पर श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार किया गया है। भगवान शब्द कई बार किसी भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए भी होता है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से यह इंगित करता है सुप्रीम पर्सन को, हाईएस्ट पर्सन को। तो हम आने वाले अपने सत्रों में और विस्तार से देखेंगे। हम देखें तो व्यासदेव जिन्होंने इसको लिखित रूप दिया भगवत गीता को, उन्होंने जहां पर भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो वो लिखते हैं श्री भगवान उवाच। व्यासदेव जी श्री कृष्ण को भगवान की संज्ञा देकर के श्री भगवान उवाच लिखते हैं। फिर अन्यत्र हम देखें ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी द्वारा लिखी गई है, जो इस भौतिक जगत के प्रथम जीव माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल करे। परम, परम मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर। तो बहुत सारे कंट्रोलर हैं, लेकिन सुप्रीम यदि कोई कंट्रोलर है तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। फिर आगे उनकी व्याख्या बता रहे हैं सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप सच्चिदानंद है, हमारी तरह से भौतिक नहीं है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के जो कारण है, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। आप चाहे तो आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। फिर हमारे वैदिक साहित्य के जो आचार्य हुए हैं, हमारी वैदिक हिस्ट्री में जो सभी आचार्य गण हुए हैं, जैसे आपने सबने नाम सुना होगा श्रीपाद शंकराचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, सभी आचार्यों ने और सभी महाजनों ने जो वैदिक शास्त्र का ज्ञान को गहराई से समझे हैं, जिन्हें महाजनों की संज्ञा दी गई है, जिसमें जनक महाराज, बलि महाराज, यमराज, नारद मुनि तो सभी महान आचार्यों और महाजनों द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया है कि जो कृष्ण हैं ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो ऐसे व्यक्ति से, ऐसे परम व्यक्ति की वाणी को हम सुनने जा रहे हैं। तो इस बात का महत्व क्या है कि क्यों हमें इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए भगवद गीता का अध्ययन की आवश्यकता है? क्योंकि ये सुप्रीम पर्सन से हम सुन रहे हैं, यानी कि ये भगवद गीता मात्र ऐसा नहीं है कि ये एक कृष्ण नाम के एक फिलोसोफर की विचारधारा है। एक मिस्टर एक्स फिलोसोफर है, एक मिस्टर वाई फिलोसोफर है, एक मिस्टर ए बी, ऐसे ही एक और फिलोसोफर एक और है कृष्ण। नो, भगवद गीता इज नॉट जस्ट वन अनदर ओपिनियन। भगवद गीता केवल एक और बहुत सारी ओपिनियंस में एक और एक मत नहीं है, जैसा आजकल सामान्यतः लोग सोचते हैं, जितने लोग उतने मत, सबका अपना अपना मत, सबकी अपनी अपनी विचारधारा। और वो ऐसा मानते हैं कि जैसे ये भगवद गीता भी ऐसी एक विचारधारा है, नहीं। तो ज्ञान प्राप्त करने के दो प्रोसेसेस हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं, एक को बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथ, और एक को बोला जाता है असेंडिंग प्रोसेस, आरोह पंथ। सभी ज्ञान को लेने के दो प्रोसेसेस हैं। जो आरोह पंथ है, असेंडिंग प्रोसेस है, उसका हमारा उदाहरण है जो हम साइंटिफिक नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं वो इस प्रोसेस से लेते हैं, आरोह पंथ। यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का वो तरीका जो इंद्रियों के द्वारा एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्राप्त किया जाए, उस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं आरोह पंथ, असेंडिंग प्रोसेस। यानी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो लेवल, ऑब्जर्व करते हैं, एक हाइपोथेसिस देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे आरोह पंथ कहते हैं, असेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो जितनी भी हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, जिससे हम अच्छे से जानते हैं जिस प्रोसेस को और जिस प्रोसेस में पढ़ते आए हैं आज तक, हालांकि इस कदर कि हमारी पूरी सोच आज ऐसी हो गई है कि जैसे मान लीजिए कि यही एक प्रोसेस है केवल ज्ञान को प्राप्त करने, क्योंकि हर चीज को हम इसी दृष्टि से लेना चाहते हैं, इसलिए हम साधारणतः देखते हैं कि लोग बोलते हैं सींग इज बिलीविंग, हम तो उसी चीज पर विश्वास करेंगे जो हम देखेंगे, क्योंकि हमें प्रशिक्षण प्रारंभ से इसी प्रकार का दिया गया है, इसी प्रोसेस का दिया गया है कि यह एकमात्र प्रोसेस है अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, हम उसे सत्य मानते हैं। जब तक हमारी इंद्रियों के द्वारा हमें विश्वास ना हो तब तक हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो यह तरीका है असेंडिंग प्रोसेस का। लेकिन इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके में समस्या यह है, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने का बेसिक आधार हमारी इंद्रियां हैं। वी यूज अवर सेंसेस, जो भी हमारा ज्ञान ले रहे हैं वो इंद्रियों के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इम्परफेक्ट हैं, इसलिए अल्टीमेटली जो भी नॉलेज इस प्रोसेस से हम गेन करते हैं अल्टीमेटली वो इम्परफेक्ट रहती है, वो परफेक्ट नहीं होती है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, आसानी से हम देख सकते हैं, जैसे साइंस में हम जानते हैं एक स्पेक्ट्रम है लाइट का, तो उसकी एक वेवलेंथ है विबग्योर, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं देख सकते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी है साउंड की, तो उसका भी एक वेवलेंथ है 20,000 हर्ट्स, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। अभी ये लाइट यहाँ से ऑफ हो जाए सब, और हमारी आंखें पूरी परफेक्ट हैं, 6x6 आई साइट है, हमें कुछ नहीं दिखेगा, अभी सामने माइक है अपना हाथ भी नहीं दिखेगा। सो वी आर नॉट परफेक्ट इन अवर सींग, वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिया सकते हैं, ये कोई बड़ा मुश्किल विषय नहीं समझने का कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो ये अपूर्णता की वजह से हर मनुष्य चार प्रकार की कमियों से घिरा है, 4 defects। कोई भी अपूर्ण इंद्रियां, गलतियां करने की गुंजाइश, टू एर इज ह्यूमन इंग्लिश में उसको बोलते हैं, सभी लोग गलती करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर्स, सभी लोग गलती करते हैं क्योंकि इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। पहले साइंटिस्ट लोग सोचते थे कि ब्रेन जो है वो ब्लड को ठंडा करने के लिए है, द फंक्शन ऑफ ब्रेन इज टू कूल द ब्लड, ऐसी धारणा थी पहले। ऐसे बहुत सारी अलग अलग आप देखते हैं साइंस में चेंज हो रही है फिलोसफीज। फिर थर्ड प्रॉब्लम है कि हम इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियां हैं इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अंधेरे में जा रहे हैं, थोड़ा सा कम लाइट है और वहां रस्सी देखी, हमको लगता है अरे सांप है, छोटा सा हम चंद्रमा एक सूरज देखते हैं, हमें दिखता तो इतना सा है पर एक्चुअली वो बहुत बड़ा है। हम लोग यदि देखें सर्दी में पानी में हाथ डालें, यदि वो ठंडा लगेगा या मान लीजिए गर्म लगेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगेगा, लेकिन हाथ को थोड़ा मालिश करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और फिर दोबारा उसी पानी में हाथ डालेंगे तो वही पानी फिर ठंडा लगेगा। तो इस तरह से वी कैन टेंड इल्यूजन। और फोर्थ प्रॉब्लम हमारे साथ इम्परफेक्शन ये है कि हम सभी के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटीज, सभी के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। कोई भी हो, नाम प्रतिष्ठा के रास्ते में जो भी आता है फिर वहां हम लोग धोखा देने की प्रवृत्ति सब में है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब में। तो ये 4 defects की वजह से कोई भी मनुष्य स्वयं अपने आप से परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकता। इसीलिए जो आरोह पंथ है असेंडिंग प्रोसेस नॉलेज का गेन करने का है, इसका जो रिजल्ट है हमेशा इम्परफेक्ट रहता है। इसका प्रमाण है, प्रूफ है कि इस प्रोसेस से जितना भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो बदल रहा है, वो स्टेबल नहीं है, हमारी थ्योरीज बदल रही हैं, न्यूटन उसके बाद फिर आगे अभी फिर आइंस्टाइन ऐसे बदलते रह रहे हैं, बुक्स के एडिशन हम देखते हैं बदलते रहते हैं, हर साल 2 साल बाद थ्योरीज बदल जाती है। क्यों? अगर वो परफेक्ट है तो बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये प्रूव करता है कि वो परफेक्ट नहीं है। जो आज नॉलेज हमारे पास है जिसे हम सिखा रहे हैं, श्योर 10 साल बाद वो हम नहीं सिखाएंगे, 10 साल बाद हम कुछ और बोलेंगे, नहीं आप ये गलत हो गया, पुराने हो गए अभी थ्योरी, दिस इज ओल्ड थ्योरी नाउ, न्यू थ्योरी हैज कम। तो ज्ञान बदलने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, वो बुक्स बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वो इम्परफेक्ट है। इसीलिए ये जो आरोह पंथ है इसके माध्यम से हम परफेक्ट ट्रुथ को नहीं समझ सकते हैं, परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं, परफेक्ट नॉलेज को नहीं ले सकते हैं, इम्परफेक्ट को ही ले सकते हैं। जिस स्तर पर पहुंचेंगे वो पहले से अधिक अच्छा होगा पर फिर भी इम्परफेक्ट होगा। इसलिए जब हम यहां प्रयास करने जा रहे हैं परम सत्य को समझने का, हाइएस्ट ट्रुथ को समझने का, परफेक्ट नॉलेज गेन करने का, पूर्ण ज्ञान को लेने का जब हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आरोह पंथ काम में नहीं आएगा। वहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी एक दूसरे प्रकार के प्रोसेस की, जिसे कहते हैं अवरोह पंथ, डिसेंडिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज। पूर्ण ज्ञानवान व्यक्ति से ज्ञान लेना। इसका उदाहरण है, हम कैसे पता लगाते हैं हमारे पिता कौन है? हमारी मां के द्वारा। हमारी मां हमको बताती, बेटे ये तुम्हारे पिता है। और मां बता सकती है श्रेष्ठ तरीके से कौन हमारे पिता है, शी इज अथॉरिटी। और उस अथॉरिटी सुनने के बाद और एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत भी नहीं रहती है, ना तो शक्य है, isn't it? केवल एकमात्र तरीका अपने पिता को जानने का है मां के द्वारा सुनना, और कोई तरीका नहीं है। एक्सपेरिमेंट से हम नहीं जान सकते, कल्पना से नहीं जान सकते, ओ इसकी नाक मेरी नाक से मिलती है, मे बी नो, दैट इज नॉट द प्रोसेस। मां बोलती है बेटे तुम्हारे पिता है, वी एक्सेप्टेड बिकॉज शी इज अथॉरिटी। तो ये तरीका है अवरोह, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज। तो जो ऐसे विषय हैं जो हमारी इंद्रियों के परे के विषय हैं, हमने देखा कि हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, जो साइंस है, जो हम भौतिक तत्वों के विषय में जो ज्ञान ले रहे हैं, वो भी इम्परफेक्ट ही मिल रहा है आरोह पंथ से। तो ऐसे विषय जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, जैसे हमारे पिता हमारे आने से पहले से थे, तो इसलिए उनके विषय में जानना एक्सपेरिमेंट से, अनुभव से संभव नहीं है, मां बता सकती है। उसी प्रकार से परम पिता, सुप्रीम, जिनसे सब कुछ उद्भूत हुआ है, जिनसे सब कुछ ओरिजिनेट होता है, उनके विषय में जानना कैसे संभव हो पाएगा हमारे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से? आरोपण से पॉसिबल कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कई सौ सालों की वैज्ञानिक रिसर्च के बाद भी आज भी एक भी थ्योरी नहीं है जो प्रॉपरली क्रिएशन को एक्सप्लेन करती हो, नॉट ए सिंगल थ्योरी विच कैन प्रूव कि क्रिएशन ऐसे होता है। सब हाइपोथेसिस हैं, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, दे आर ट्राइंग, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिली है, बहुत बहुत पीछे हैं। जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय को लेकर कितनी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी तक एक चीटी भी नहीं बन पाई है, एक चीटी भी नहीं बन पाई है। भले ही हमारी टेक्स्ट बुक में वो आ गई है, ये भी चीटिंग प्रोपेंसिटी का एक उदाहरण है। हालांकि वो लोग कोई भी प्रूव नहीं किए हैं, वो जानते नहीं, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक में हमको ऐसा सिखाया गया एज इफ उन्होंने सब जान लिया है, केमिकल ओरिजिन, सब कुछ केमिकल से आया, बट एक्चुअली वो अभी तक केमिकल से मिला करके एक चीटी भी नहीं बना पाए। तो ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है। तो ऐसे विषय कि सब कुछ का क्रिएशन कहां से होता है और क्यों होता है, ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा? साइंटिस्ट लोग तो इसको अभी साइड में रख दिए, क्यों, आखिर ये सृष्टि का सृजन होता ही क्यों है, आखिर हम एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, ये प्रश्न का तो वो साइड में रख देते हैं, ये प्रश्न तो सोचते भी नहीं ज्यादा इसके ऊपर, तो इसके बारे में आसानी से एक शब्द यूज कर देते हैं, ये सब ऐसे ही बस विदाउट एनी पर्पज ऐसे ही हुआ होगा, जस्ट बाई चांस हो गया होगा, और इसके पीछे कोई विशेष पर्पज नहीं है। कितना अटपटी चीज है। एक छोटा सा, हम कोई भी एक छोटी सी घड़ी कोई सामने मिल जाए किसी को, कोई बच्चे को, किसी को, वो तुरंत पूछता है, पिताजी ये क्या है? घड़ी है। किस लिए है? इमीडिएटली विल आस्क। छोटी सी कोई चीज, हमें पता है कि इसका कोई प्रयोजन होगा, इसे किसी ने बनाया होगा, किसी प्रयोजन से, किसी हेतु से बनाया होगा। तो हम क्या ये नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना सिस्टमैटिकली जो चल रहा है, इतने सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड, क्या उसके पीछे कोई पर्पज नहीं होना चाहिए? क्या उसको क्रिएट करने वाला कोई नहीं होना चाहिए? बाई चांस इट केम फॉर नो पर्पज। तो दिस इज, ये तो इग्नोरेंस को दूसरा नाम दे दिया, हम नहीं जानते इसलिए हम बोल दिए कि ये अपने आप हो गया और इसके पीछे कोई हेतु नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते। वो बच्चे की तरह से, जैसे छोटा बच्चा है, कोई देख रहा है पहली बार कि ये एक टेप रिकॉर्ड में से आवाज आ रही है, उसे अरे बिना आदमी के आवाज आ रही है, उसे लगे कैसे संभव है, आदमी इसके अंदर लगता है, अज्ञानता है उसको। तो उसी प्रकार से ये जो विषय है कि सभी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है, ऐसे आधारभूत प्रश्नों का उत्तर यदि हमें मिल सकता है तो केवल अवरोह पंथ से मिल सकता है, आरोह पंथ से नहीं मिल सकता। अवरोह पंथ यानी कि जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, यदि हमारा कॉन्टेक्ट उससे हो जाए, यदि हम उनसे समझ सकें, तो ही संभव है जानना कि सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, isn't it? तो इसलिए एकमात्र तरीका यदि इस सृष्टि को समझने का है, अपनी एग्जिस्टेंस को समझने का है, हम कौन हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, तो वो तरीका है साक्षात जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, हमें भेजा है, हमें बनाया है, उससे यदि हम सुने तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अवरोह पंथ, शब्द प्रमाण जिसे बोलते हैं। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो इस प्रोसेस का पार्ट है, शब्द प्रमाण। यानी कि ये जो शास्त्र हैं, अगर आप शास्त्र के डिटेल में जाएंगे तो कहा गया है कि शास्त्र जो है अपौरुषेय है, शास्त्र जो है किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है, शास्त्र अपौरुषेय है, जो इसका सोर्स है वो किसी एक भौतिक जगत के व्यक्ति के द्वारा नहीं है। और आप डिटेल में अंदर जाएंगे तो बताया गया है तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी, जो पहले लिविंग क्रिएचर, पहले जीव जो बनाए जाते हैं किसी भी ब्रह्मांड के अंदर, सबसे पहले उनके हृदय में ये ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, सृष्टि क्यों, कैसे, किस लिए इत्यादि ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले आरोपित किया, प्रकट करा, रिवील किया, और फिर ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्रों, और इस प्रकार से परंपरा चलते हुए ये ज्ञान आज तक आ रहा है। तो जो हमारे शास्त्र है उसका ओरिजिन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है, व्यासदेव जी ने उसको लिखित रूप दिया, पर यदि आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो व्यासदेव जी से पहले भी ज्ञान था। व्यासदेव जी बता रहे हैं ईमान ज्ञान मैंने कहां से लिया, मेरे गुरु से लिया, नारद मुनि, नारद मुनि ने श्री ब्रह्मा जी से लिया, और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ज्ञान मुझे कहां से मिला, तेन ब्रह्म हृदय आदि का वही सब डिटेल्स हैं शास्त्र में। तो शास्त्रों का ज्ञान अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति के द्वारा सर्जित नहीं है, ये परंपरा से श्रुति, इसलिए इसको श्रुति बोलते हैं, सुन करके ये ज्ञान आता है भगवान से, ब्रह्मा, और उसके बाद फिर ये गुरु परंपरा में सुन करके ये ज्ञान आता है और हम तक आज तक पहुंचता है, इसलिए इसको श्रुति बोलते हैं। तो वैदिक ज्ञान जो है इसीलिए वो परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है, क्योंकि उसका ओरिजिन परफेक्ट है, उसका ओरिजिन भगवान जो परफेक्ट है, इसलिए उसमें हर चीज परफेक्ट है। इसलिए साधारणतः अभी थोड़ा कम हो गया है, जब किसी व्यक्ति का साधारण इंडिया में कभी डिस्कशन हो, कोई अपना तर्क वितर्क रख रहा है, तो अगर हमें किसी से पूछना हो तो हम बोलेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है, कॉमन ऐसे हम बोलते हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है, यानी कि शास्त्र को प्रमाण माना जाता है, शास्त्र अपने आप में प्रमाण है। जैसे लॉ बुक, हम कोर्ट में जाएं तो हम तुरंत बोलते हैं कौन से लॉ में लिखा है, लॉ बुक प्रमाण है। तो उसी प्रकार से ये लॉ बुक है, ऑल परफेक्ट, इसको ये खुद में प्रमाण है, जो भी इसमें दिया है 100% करेक्ट। जो शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं कि ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है, उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में उल्लेख है स्मृति के अंदर कि यदि हम किसी भी पशु की या किसी की के मल को स्पर्श कर लें गलती से, तो तुरंत हमें स्नान करना चाहिए, हम अशुद्ध हो जाते हैं, ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो गाय का जो गोबर है वो शुद्ध माना गया, हम उसे लिपाई करते हैं शुद्ध करने के लिए और भगवान की पूजा में यूज करते हैं उसको। तो ये साधारण व्यक्ति देखेगा कि तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ही शास्त्र में एक जगह लिखा है कि मल अशुद्ध है और गाय के मल को शुद्ध कहा गया, क्यों? तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि शास्त्र अपौरुषेय है, ये 100% परफेक्ट है, उसे पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है तो है, लेकिन ये शुद्ध है तो शुद्ध है, उसको एज इट इज स्वीकार करेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, तो यदि वो चेक भी कर ले साइंस से भी, तो भी वो यही पाएगा, यस इट इज प्योर। तो आज वैज्ञानिक विधि से भी ये प्राप्त पता लगा है कि एक्चुअली काउ डंग के अंदर सभी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं। तो हमारे शास्त्रों में जितना भी ज्ञान दिया है, धीरे धीरे साइंस के माध्यम से भी पता लग रहा है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। शास्त्र कभी बदले नहीं है, बदल नहीं रहे हैं, हजारों हजारों साल से वही भगवद्गीता, वही शास्त्र चले आ रहे हैं। साइंटिस्ट पहले मानते थे जिन चीजों को कि शास्त्र में सब गलत लिखा है, सब मनगढ़ंत कहानियां, आज वही साइंटिस्ट धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, अरे दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य में भी जीवन है, हमारे यहाँ बात होती है सूर्य देव की, तो सामान्यतः साइंटिस्ट लोग या सोचते हैं मॉडर्न लोग क्या ये सब कहानियां हैं, सूर्य में कभी जीवन हो सकता है, कितना हाई टेम्परेचर है यहां, तो पता लगा लिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो सब खत्म हो जाता है लाइफ। तो आज वही साइंटिस्ट पता लगाए हैं कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो केवल अग्नि में ही रहते हैं, फायर में ही रहते हैं, उनको फायर बैक्टीरिया नाम दिया गया। तो रशिया में अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, क्योंकि ये सब सेस्मोलॉजी के लिए, भूकंप इत्यादि के ज्ञान को, उसको ड्रिल किया गया कई किलोमीटर तक अंदर, तो उसमें समुद्र के अंदर कई किलोमीटर तक, तो वहां से बहुत गर्म लावा निकला और उसका जब अन्वेक्षण किया गया तो पाया कि वहां के अंदर बैक्टीरिया, इसको फायर बैक्टीरिया नाम दिया गया। तो वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि शास्त्र में जो भी है सही है, शास्त्र के अंदर पहले से ही है कि पौधों के अंदर जीवन होता है, लेकिन साइंटिस्ट्स को नहीं पता था जब तक कि जगदीश चंद्र बोस ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव नहीं किया यस पौधों में भी जीवन है। हमारे शास्त्रों में हमेशा से लिखा है भूगोल है, बिना स्पेस क्राफ्ट के, बिना स्पेस क्राफ्ट के पहले से लिखा है भूगोल है। पर साइंटिस्ट लोग पहले सोचते थे कि नहीं फ्लैट है, फिर बाद में पता लगा नहीं एक्चुअली भूगोल है, पर हमारे शास्त्र में पहले से लिखा है। पांचवें स्कंद में श्रीमद भागवतम के अंदर मां के गर्भ के अंदर शिशु का पूरा विकास कैसे कैसे होता है, स्टेजेस, किस महीने पे क्या ऑर्गन बनता है, हार्ट बीट कब शुरू होती है, हाथ पैर कब बनने शुरू होते हैं, सटीक वर्णन मिलता है जो आज अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा प्रूव किया यस दिस इज करेक्ट। उस समय कोई अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं थी 5000 ईयर्स बैक जब लिखा गया, लेकिन हाउ कैसे हो गया ना। हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हुई हैं, भविष्यवाणियां हुई हैं जो सही सिद्ध हुई, केवल एक साल दो साल या कल परसों की भविष्यवाणी नहीं, 1000 ईयर्स अहेड, हजार हजार साल आगे की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है, हिस्ट्री के अंदर प्रूव हुई। अगर हम किसी देखते हैं कोई साइंटिस्ट लोग यदि अपना भविष्यवाणी देते हैं कि कल सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण हो जाता है तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है, अरे साइंटिस्ट लोगों को बहुत नॉलेज है, वो लोग पता लगा पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में देखें 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया कि 2000 साल बाद बुद्ध के रूप में भगवान इस जगह पर अवतरित होंगे, उनके माता का नाम ये होगा, पिता का नाम ये होगा, उनके क्रियाकलाप ये होंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, हिस्ट्री हम देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य पंडित के बारे में, इवन जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, उन सब के बारे में हमारे शास्त्रों के अंदर भविष्यवाणी हुई थी जो सही सिद्ध हुई इन हिस्ट्री वी कैन सी। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे शास्त्र किसी एक कोई कहानियां नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, किसी एक साधारण व्यक्ति के द्वारा चित्र नहीं है, ये ऑल परफेक्ट ज्ञान है। तो ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो शास्त्र है वो अपौरुषेय है, वो साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसलिए वो शब्द प्रमाण है। इसीलिए इसके माध्यम से ही हम, शास्त्रों के माध्यम से ही हम परफेक्टली जान सकते हैं ये सब क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन का हेतु, प्रोसेस, हमारी एग्जिस्टेंस का कारण इत्यादि इत्यादि सभी प्रश्नों का उत्तर परफेक्टली यदि जानने का कोई तरीका है तो वो है हमारे शास्त्र। सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवद् गीता, ये सभी आचार्य स्वीकार करते हैं कि सभी शास्त्रों का जो मर्म है वो है श्रीमद् भगवद् गीता। तो यदि हम, इसलिए हम आज इसको पढ़ने बैठे, हम यहां पर साइंस की बुक लेकर नहीं बैठे हैं, हम यहां किसी अन्य फिलोसोफर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां भगवद गीता लेकर बैठे हैं। क्यों? ये शास्त्रों के माध्यम से आता है, यानी कि जो परफेक्ट है, अपौरुषेय है, और सभी शास्त्रों का ये सार है। तो इसलिए हम यहां पर आज अपना समय निकाल करके आप लोग यहां आए हैं, हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है, यानी कि जो भी इसमें ज्ञान दिया है इट इज परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। फिर तो अभी प्रश्न जैसे हमने पहले उठाया कि यदि भगवद गीता समझना है, अब ये समझ गया कि भगवद गीता कितना इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अनदर ओपिनियन। ये मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हमें भगवद गीता पढ़ते समय इस भावना से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये भी एक फिलॉसफी है, मेरी भी एक फिलॉसफी है और ये भी एक फिलॉसफी है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। ओ कृष्णा फिलोसफर कह रहे हैं ये बात, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आगे क्या कहते हैं, ये चीज मेरे हिसाब से सही है, ये एक्सेप्ट कर लेता हूं, पर ये जो चीज है ये मेरे हिसाब से नहीं, ये गलत है। नहीं, अगर हमारी ये अप्रोच है भगवद गीता पढ़ने में, दैट मीन्स वी आर नॉट क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, हम भगवद गीता समझने के लायक नहीं है, क्योंकि भगवद गीता परम सत्य ज्ञान है, इसीलिए उसको एज इट इज लेना पड़ेगा यथारूप। ऐसा नहीं कि हम जो श्लोक हमको पसंद आए, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में सही उतरते हैं, वो हम स्वीकार कर लें और बाकी को छोड़ दें, नहीं, या उसमें चेंज करें अपनी बुद्धि से, इसका मतलब एक्चुअली ये होना चाहिए, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में ये पुरानी बात है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होना चाहिए, जहां हमने ऐसा किया वहीं ये भगवद गीता जो परम सत्य है वो परम सत्य नहीं रह जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा हमारे इम्परफेक्शन से और वो नॉलेज पूरी इम्परफेक्ट हो जाएगी। ऐसा कर रहे हैं अधिकतर कमेंटेटर्स भगवद गीता के, वो लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं एज ए स्कॉलर, उसको देखते हैं इसमें क्या सही है और अपनी बुद्धि से उसका अन्वेक्षण करके, एनालिसिस करके अपने प्रकार से उसको प्रकट करते हैं, जिससे कि भगवद गीता एज इट इज नहीं रह पाती, परफेक्ट नहीं रह पाती, इम्परफेक्ट हो जाती है। कैसे है? अगर इस समय हमें सूरज देखना है, कोई बच्चा बोले पिताजी सूरज कहां है, क्या हम सूरज दिखा सकते हैं उसको इस समय, कितना भी बड़े से बड़ा हैलोजन ले आए तो भी हम सूरज नहीं दिखा सकते। और जब सुबह होने पर सूरज आएगा तो आपको किसी हैलोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूरज अपने आप में दिखा सकता है अपने आप को, उसको हमारी टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद प्रकाश से भरा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान की वाणी अपने आप में प्रकाश है, वो अपने आप में एक्सप्लेन कर सकती है अपने आप को, उसमें किसी ऑथर की किसी कमेंटेटर की अपनी बुद्धि लड़ाई जरूरत नहीं है कि भगवान एक्चुअली ऐसा कहना चाह रहे होंगे, भगवान का मतलब ये होगा, भगवान का मतलब ये होगा, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट प्रोसेस। इसीलिए इस भगवदगीता का नाम जो श्री प्रभुपाद ने दिया है एज इट इज दिया है, इसमें उनकी अपनी बुद्धि नहीं लड़ाई उन्होंने, शब्द शब्द शाह जो कृष्ण कह रहे हैं उसका एज इट इज प्रस्तुत किया। तो पहले तो ये क्वालिफिकेशन हमें समझना पड़ेगा, यदि हम भगवदगीता को यथारूप समझना चाहते हैं, वास्तव में उसको अपने जीवन में उपयोग करना चाहते हैं, उसके एसेंस को उसके रहस्य को समझना चाहते हैं, तो पहले तो ये क्लियर होना पड़ेगा पॉइंट कि ये नॉलेज जो है ये एब्सोल्यूट है और इसको एज इट इज लेना है। फिर अभी भगवदगीता के जो हमने जैसे बोला ऑथर क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, हाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस, क्या प्रोसेस बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या बता रहे हैं, कौन इस भगवदगीता को समझ सकता है। जैसे कोई भी हम स्टडी करने जाएं इंजीनियरिंग तो क्वालिफिकेशन, यू शुड हैव पास प्लस टू विद सो सो ग्रेड्स, देन ओनली तभी आपका एडमिशन मिलेगा इंजीनियरिंग में, अदरवाइज एडमिशन नहीं है। बिकॉज अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इंजीनियरिंग ज्ञान समझ नहीं सकते। बुक्स तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो क्वालिफिकेशन की आती है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तभी आप इस नॉलेज को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। तो उसी प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवदगीता को एज इट इज समझने की क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। तो भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कह रहे हैं, स एवायम मयात अद्याप योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। हे अर्जुन, मैं यही पुरातन ज्ञान तुम्हें आज दोबारा बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। क्लियर शब्दों में भगवान बता रहे हैं क्वालिफिकेशन क्या है। भगवदगीता कौन समझ सकता है, भगवान का भक्त समझ सकता है, भगवान का भक्त समझ सकता है। संस्कृत का पंडित भगवदगीता को नहीं समझ सकता है, संस्कृत में पीएचडी किए हुआ क्वालिफिकेशन भगवान नहीं बताए कि जिसको संस्कृत अच्छी आती है वह भगवदगीता समझ सकता है, भगवान ऐसा नहीं बोले। जो बहुत अधिक ऑस्टेरिटीज कर रहा है, तपस्याएं कर रहा है हिमालय में जाकर के, भगवान नहीं बोले भगवदगीता में कहीं भी कि ऑस्टेरिटी करने से मेरे को समझ सकते हो। भगवान नहीं बोले जो शास्त्रों में पंडित है वो मेरे को समझ सकता है, नहीं, बल्कि अन्यत्र कहा गया है शास्त्रों में, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, वेदों के द्वारा मात्र वेदों का अध्ययन करने से भी मैं नहीं समझ सकता हूं, मेरे को नहीं समझ सकता है, अदुर्लभम लेकिन मैं बहुत आसानी से समझ में आ सकता हूं आत्मभक्तौ, अपने भक्तों के द्वारा। जगह जगह भगवान बताएंगे भगवदगीता में, भक्त्या माम अभिजानाति यावनाश्चास्मि तत्त्वतः, तत्त्वतः यदि मेरे को जानना है तो भक्ति करना पड़ेगा। सो सिंपल क्वालिफिकेशन भगवदगीता को समझने की, भगवान श्री कृष्ण को यथारूप समझने की है, हमको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, जैसा अर्जुन थे। अर्जुन बेस्ट स्टूडेंट हैं भगवदगीता के, तो हमारे हम यदि भगवदगीता समझना चाहते हैं तो हमें अर्जुन के समान क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब हम समझ सकते हैं। तो अर्जुन के अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, भगवान बता रहे हैं तुम मेरे भक्त हो, डिवोटी हो। भक्त का मतलब क्या होता है, भक्त का मतलब होता है कि वो जानता है कि मैं दास हूं और भगवान स्वामी है, मेरा कार्य मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। जो इस कंक्लूजन में स्थित है उसे भक्त कहते हैं, मैं दास हूं भगवान स्वामी है, मैं भगवान का सेवक हूं और मैं भगवान की सेवा करूंगा, इसे कहते हैं भक्त। जो इस मेंटेलिटी में स्थित है वही भगवदगीता को समझ सकता है। क्यों, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और मेटेरियल नॉलेज है इसमें एक बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है कि मेटेरियल नॉलेज हम अपनी बुद्धि से ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान क्योंकि ये भौतिक तत्वों के परे का ज्ञान है इसलिए उसको हम भौतिक बुद्धि से इंद्रियों से, हमने इंद्रियों देखा, इंद्रियां तो इम्परफेक्ट हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही बुद्धि में ज्ञान पहुंचता है। अगर इंद्रियां परफेक्ट हैं तो बुद्धि भी जो भी एनालाइज करेगी अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी इम्परफेक्ट। तो इसको भौतिक बुद्धि से भौतिक मन से भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं ले सकते हैं क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान अधोक्षज, उसको बताया गया आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अधोक्षज, अधा उक्षज मीन्स, अधा मीन्स नीचे धकेलना, अक्षज मीन्स इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य, आध्यात्मिक ज्ञान को अधोक्षज कहा गया है क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, ये भौतिक इंद्रियों, भौतिक मन, भौतिक बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं किया, समझा नहीं आ सकता है। ये बहुत आधारभूत डिफरेंस है। तो कैसे समझा सकता है? प्रकाशयंती, रिवील नॉलेज कहते हैं शास्त्र को, ये प्रकाशित किया जाता है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। शास्त्र में कथन है, यस्य देवे परावत्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कृता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो भगवान का सेवक है, जो भगवान की सेवा में अनुरक्त है, भगवान अपनी कृपा से उसे ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं। भगवान के पास अधिकार है किसी व्यक्ति को अपने को प्रकाशित करने का, इस ज्ञान को प्रकाशित करने का या नहीं करने का, ये उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हम अपने एफर्ट से कभी भी भगवान को एज इट इज, पूरी तरह से इस ज्ञान को एज इट इज नहीं समझ सकते हैं। हम कितने बुद्धिमान हो, हम कितने फिलोसफर हो, कुछ भी हो, तरीका बिल्कुल अलग है। भगवान के पास अधिकार है, जिसको वो चाहे उसको ये रिवील करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान बताते हैं मैं सबके सामने अपने को प्रकाशित नहीं करता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं अपनी योग माया से आवृत रहता हूं, नहीं प्रकाशित होते हैं भगवान। तो किसको प्रकाशित करते हैं भगवान? स्वाभाविक, बिल्कुल कॉमन सेंस। हम अपने रहस्य के बारे में, अपने बारे में किसी, किस व्यक्ति को बताना चाहते हैं? किस व्यक्ति को बताएंगे अपने रहस्य, अपने हृदय की बात किसे खोलते हैं? जो हमारा मित्र है, जो हमारा सखा है, जो हमारा अपना हितैषी है, उसे हम बताएंगे, अपने दुश्मन को नहीं बताएंगे। तो स्वाभाविक है कि भगवान इस ज्ञान को रिवील करेंगे, अपने को रिवील करेंगे, प्रकाशित करेंगे किसे? जो उनका भक्त होगा, ना कि उसको जो भगवान से कंपटीशन करने में लगा है, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, भगवद्गीता समझ लूंगा और फिर मैं भी भगवान बन जाऊंगा। मैं भगवद्गीता क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मैं लोगों को फिर बताऊंगा, यार भगवद्गीता इसमें ये लिखा है, मैं इससे अधिक जानता हूं, देखो इसमें एक्चुअली ये मतलब होना चाहिए, इसमें ये गलत है। जो इस भावना से भगवद्गीता पढ़ रहा है, यानी कि भक्त नहीं है, भगवान कभी उसको अपने प्रकाशित नहीं करेंगे। इसलिए वो 700 के 700 श्लोक जानकर भी वो मूढ़ रहेगा, मूर्ख रहेगा, अपना जीवन बेकार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संस्कृत में PhD है, उपनिषद में PhD है, संस्कृत के सब श्लोक आते हैं, भगवद्गीता सब आती है, पर फिर भी उनका जीवन आप देखिए, एक बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते हैं, उनसे वो भी नहीं छूटता है। सिंपल चीज, कहां ये ज्ञान आप प्राप्त किए, फायदा क्या हुआ? आपने केवल स्कॉलरली थियोरिटिकल नॉलेज ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकल को एप्लीकेशन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस गलत था आपका। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको समझना है कि भगवद्गीता को समझने का प्रोसेस है, हम भगवान के भक्त हों, भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा के लिए भगवद्गीता पढ़ें, ना कि भगवान बनने के लिए या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। नाउ आई एम ए वेरी ग्रेट स्कॉलर, आई नो संस्कृत, आई नो दिस दैट, इंप्रेस करने के लिए, यानी किसी भौतिक हेतु से यदि हम भगवद्गीता पढ़ेंगे तो भगवद्गीता का रहस्य रहस्य बना रहेगा। अगर भगवद्गीता के मर्म को समझना है, अपने हृदय में उतारना है, तो उसका एकमात्र तरीका है भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। तो जैसे अर्जुन भगवान के भक्त हैं, अर्जुन भगवान को कहते हैं, स्वीकार करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म हैं, सुप्रीम ब्रह्मन, परम सत्य हैं आप, परम ब्रह्म पवित्रम परम धाम, आपका जो धाम है वो परम धाम है, सुप्रीम है बोर्ड, पवित्रम परम, आप प्योरेस्ट हैं, पूर्ण रूप से पवित्र हैं, पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम, यू आर ए पर्सन, कैसे पुरुष? शाश्वत, इटर्नल, दिव्यम, दिव्य है, भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर हमारे जैसा हड्डी मांस का नहीं बना होता है, वो सच्चिदानंद है, दिव्यम, आदि देवम, सभी देवताओं के आदि हैं, अजम, जिनका कोई जन्म नहीं है, अजम विभूम, विभू है, महान है, अर्जुन कह रहे हैं ये है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मैं आपका फ्रेंड हूं इसलिए चापलूसी कर रहा हूं, नो, हमारे सभी ऋषिगण ऐसा ही स्वीकार करते हैं, बता रहे हैं आगे नेक्स्ट श्लोक में, असित देवल व्यास नारद सभी आपको एज इट इज इसी प्रकार से परब्रह्म के रूप में स्वीकार किए हैं, इसीलिए मैं आपको ऐसा स्वीकार कर रहा हूं। और फिर कह रहे हैं आज खुद आप भी खुद घोषित कर रहे हैं, यस यू आर दैट सुप्रीम ब्रह्म, भगवान खुद घोषित करते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, देयर इज नो ट्रूथ हायर देन मी। तो भगवान खुद कह रहे हैं, सभी ऋषिगण कह रहे हैं, सभी शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए हमें समझना, हमें इस आधार पर स्वीकार करना है कि कृष्ण भगवान है, ब्लाइंड फेथ नहीं, सुपरस्टिशन नहीं, विथ फुल लॉजिक, विथ फुल रीजनिंग। इसलिए अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद्रितद मन्ये यन्मम वसी केदशा केशव, हे केशव, इसीलिए आप जो भी आज मुझसे कह रहे हैं मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं, वट एवर यू से आई एक्सेप्ट इट। इस भावना से यदि हम भगवदगीता पढ़ेंगे तो अर्जुन के समान हम क्वालिफाइड हैं, तब हम भगवदगीता को एज इट इज ग्रहण करके अपने जीवन में उसको यूज कर सकते हैं। तो अर्जुन तो भगवान से डायरेक्ट सुन रहा था, भगवान का भक्त था, उसका इतना सौभाग्य था, इतना महान भक्त है कि वो भगवान से डायरेक्ट सुन रहा है, पर हमारा संपर्क तो डायरेक्ट भगवान से नहीं है, हम तो भगवान के संबंध में डायरेक्ट नहीं है, हम भगवान को डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं, अर्जुन की तरह से हम भगवान से डायरेक्ट नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम कैसे समझें? तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं प्रोसेस क्या है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषो विदु, क्या कह रहे हैं, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्यमन विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवि अब्रवीत। हे अर्जुन, यही ज्ञान मैंने करोड़ों करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु यानी कि मनुष्य जाति जहां से प्रारंभ होती है, मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु जो कि श्री राम उन्हीं उसमें सबसे पहले आए थे, इक्ष्वाकु राजा, और उसी प्रकार से एवं परंपरा प्राप्तम, इसी प्रकार से परंपरा के द्वारा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदु, सभी बड़े बड़े राजऋषियों ने परंपरा के माध्यम से इसको ग्रहण किया। तो भगवान प्रोसेस बता रहे हैं, भक्त होना चाहिए और या तो मेरे से डायरेक्ट सुनो, वो तो हमारी क्वालिफिकेशन है नहीं, तो क्या करो परंपरा में आओ। जो भगवान के शुद्ध भक्त जिन्होंने परंपरा में ये ज्ञान लिया है उनके अंदर भी वही शक्ति है इस ज्ञान को हमें देने की जो भगवान में है, भगवान की कृपा से। जैसे भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं भक्त के सम्मुख, उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के, वो एक एक भक्ति के डिवोशन के मूड से जो शिष्य सुनना चाहता है, समझना चाहता है, वो गुरु उसको वही ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता को समझने का एकमात्र तरीका है, पहले हमें अपना भाव डिवोशन करना पड़ेगा, स्पिरिट शुड बी डिवोशनल, यानी कि समझना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, और परंपरा में आए, शुद्ध भक्तों की परंपरा में आए गुरु के माध्यम से यदि हम इसको समझेंगे भक्ति भाव से तो ही समझ सकते हैं। इसीलिए यह हम कल डिस्कस कर रहे थे मुरली, व्हाई दिस भगवद गीता एज इट इज, इसका नाम एज इट इज क्यों दिया गया, क्योंकि ये सभी क्वालिफिकेशंस इस बुक के अंदर हैं। जो श्रील प्रभुपाद हैं, आप इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पर देखेंगे, जिनके पास ये भगवद गीता है वहां पर ये गुरु परंपरा दी है जिस परंपरा में वो आए हैं, और वो किसी स्कॉलरली प्रेजेंटेशन करने के लिए ये बुक नहीं लिखे हैं, केवल भक्ति, पूरा जीवन का भक्ति में था, केवल उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान की सेवा करना, इस उद्देश्य से ही केवल ये पुस्तक लिखी गई और कोई हेतु नहीं। इसीलिए इसको पढ़कर के प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये बुक क्यों एज इट इज होने की वजह से, क्यों भगवान का संदेश एज इट इज मिलता है, प्रूफ है। आप देखिए तो पूरे संसार में प्रैक्टिकल इस बुक को पढ़कर के आज हिंदू छोड़िए, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इंडियन छोड़िए, अमेरिकन, जर्मन, रशियंस, निग्रोज आज भगवान कृष्ण के पीछे पागल हो गए, पूरा लाइफ डेडिकेट किए हैं, एक नहीं हजारों हजारों की संख्या में, विच शोज कि इसके अंदर पोटेंसी है। क्यों है? क्योंकि वो जो हमने सब क्वालिफिकेशन बताई है भगवद गीता पढ़ने की समझने की, वो सब क्वालिफिकेशन से पूर्ण है ये, और उसी परंपरा में आते हुए हम यहां एक विनम्र भाव से प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का। तो यदि हम इस बैकग्राउंड के साथ आने वाले सत्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवद गीता को, भगवान की वाणी को एज इट इज ग्रहण कर पाएंगे, और जब उसको अपने जीवन अपनाएंगे तो आप देखेंगे चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ लाइफ, लाइफ के प्रति कैसे दृष्टिकोण चेंज हो रहा है, आपके जीवन कैसे सुखमय बनता जा रहा है। तो भगवद गीता इस प्रकार समझनी है, और भगवद गीता सुनने से क्या होगा, लाभ क्या होगा, ये भौतिक जगत में सभी लोग विषमताओं में घिरे हैं, कष्टों में घिरे हैं, उन सभी कष्टों का, विषमताओं का कारण है कि हालांकि हम आत्मा हैं, हम नित्य हैं, हम पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत हैं, हम पूर्ण आनंदमय हैं, लेकिन एट प्रेजेंट हमने एक असत शरीर को धारण किया हुआ है, एक टेम्पररी बॉडी को हमने धारण किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें, हालांकि हम नित्य हैं पर हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार हमारा मरण होता है, हालांकि हम पूर्ण आनंद में हैं लेकिन इस शरीर की वजह से हमें अनेक अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो भगवद गीता का ज्ञान से हम, भगवद गीता क्यों सुनाई गई है, ये सब अज्ञानता को खत्म करने के लिए, जिसके द्वारा ये जो अज्ञानता की वजह से हमने एक पहनावा पहन लिया है, एक शरीर धारण करना पड़ा है, हम इससे अपने को अलग करके अपनी स्वाभाविकता को समझ सकें कि हम कौन हैं, हु वी आर, जो आज हमारे कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है। सबसे बेसिक चीज की हम कौन है ये ज्ञान नहीं। तो भगवद गीता के माध्यम से हम वो पता लगाएंगे कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम क्यों हैं, क्यों ये सृष्टि बनी है, ये सब प्रश्न लेंगे। इसे कहते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अगेन एक और क्वालिफिकेशन भगवद गीता को पढ़ने के लिए योग्यता क्या है, जो स्टूडेंट है वो ब्रह्म जिज्ञासु होना चाहिए, उसे जिज्ञासा होनी चाहिए इन प्रश्नों की कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, क्यों हूं, मुझे क्यों ये कष्ट आते हैं, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है फिर भी क्यों बूढ़ा होना पड़ता है, कोई मरना नहीं चाहता है फिर भी क्यों मरना पड़ता है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। जानवर जिज्ञासा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य कहलाने लायक, कहलाने के लिए वही व्यक्ति लायक है जो ये ब्रह्म जिज्ञासा करता है। यहां से स्टार्टिंग होती है ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसके नीचे ह्यूमन सिविलाइजेशन है ही नहीं, द्विपाद पशु है, दो पैर वाले पशु हैं शास्त्र के अनुसार। जब तक ये जिज्ञासा नहीं है मनुष्य के अंदर कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्यों है, हमें क्यों कष्ट आते हैं, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जब तक ये प्रश्नों का उत्तर हम नहीं ढूंढ रहे हैं तब तक हम मनुष्य के अध्ययन लायक नहीं है। तो जो व्यक्ति इंक्विजिटिव है, जिसके अंदर ये इच्छा है, और जो इस प्रकार से समझते हुए इस भक्ति भाव से ये भगवद गीता गुरु परंपरा में आए गुरुओं से माध्यम से समझने का प्रयास करता है, वो बेस्ट स्टूडेंट है भगवद गीता को समझने का, वो समझ पाएगा। हरे कृष्ण। अभी इस विषय में आपका यदि कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रयास कर सकते हैं इसको देने का। हाँ जी,
जैसे अभी आपने कहा कि मतलब गुरु भगवान कृष्ण तो मिलेंगे नहीं,
हाँ जी,
तो हमें गुरु मिलना चाहिए,
हाँ जी,
तो गुरु कहाँ से लाएं, गुरु जो तो आजकल मिलना मुश्किल है,
हाँ जी, तो जो हाँ जी
मतलब जैसे गुरु आपने सबू पाठ जी है या और भी है,
हाँ जी,
ऐसे गुरु को सानिध्य और मुश्किल है,
हाँ जी, तो गुरु पाने की विधि क्या है। जब व्यक्ति के हृदय में भगवान को समझने की शुद्ध इच्छा होती है तो भगवान गुरु भेजते हैं।
तो बुद्धे हो गए भगवान को भक्ति करते करते, और अभी तक इच्छा है कि अगर कोई गुरु मिले तो अब तो हम बिल्कुल ही,
हम कई बार अपने हृदय को, हम कई बार अपने हृदय को स्वयं भी नहीं जान पाते हैं कि हमारे हृदय में कितनी क्या इच्छाएं हैं। एक्चुअली भगवान का सभी जीवों को अपने पास लाने का एक मास्टर प्लानिंग चल रहा है, वो हमारी समझ में नहीं आता है कई बार, लेकिन भगवान का प्लानिंग है सब जीवों को वापस उनके धाम लाने का। अभी उस प्लानिंग में हमें कई बार समझ नहीं आएगा हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें क्यों भगवान ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भगवान की जब परिपक्व स्थिति आएगी, मैच्योर स्टेज जब है तब वो हो रहा है। आज आप इस भगवद गीता को एज इट इज सुन रहे हैं, ये 6 सेशन कोर्स, ये एक स्टेप हो सकता है। नहीं, हमको नहीं पता, हम क्या कह रहे हैं कि भगवान को पता है कि किसको कैसे बुलाना है, भगवान हमारे हृदय को जानते हैं। जब हमारे अंदर शुद्ध इच्छा होगी और जब हम परिपक्व होंगे उस ज्ञान को लेने के लिए, तब हमारा सानिध्य गुरु से होगा। यानी एक हाँ जी, क्यों नहीं हो सकते, अच्छा एक नहीं मैं बताता हूँ, नहीं नहीं अगले जन्म की बात नहीं है, नहीं अगले जन्म नहीं, आपने सुना है खटवांग महाराज के बारे में सुना है, खटवांग महाराज थे जिन्होंने देवताओं के ऑन बिहाफ बहुत लंबे समय तक असुरों से युद्ध किया। तो जब युद्ध खत्म हो गया, जीत गए, उसके बाद खटवांग महाराज ने पूछा कि मेरी आयु कितनी रह गई, बिना सोए बिना लगातार युद्ध चल रहा था। तो देवताओं ने कहा अभी केवल कुछ क्षण रह गए, लंबे रह गए कुछ, तुरंत उन्होंने ठीक है कुछ क्षण रह गए, पूरी तरह से एकदम से अपने को भगवान के चिंतन में लगाया, भगवान की सेवा में लगाया, मन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब किया और उनको सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति में जाना टाइम में लिमिटेड नहीं है, उम्र से लिमिटेड नहीं है। अगर आपके अंदर सही मार्ग में आने के बाद पूरी तरह से आप भगवान के शरणागत होते हैं, एक क्षण के अंदर आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसी बात नहीं है,
देखिए आप जैसे लोग हैं इन्होंने आपने जो अपना बचपन जवानी सब डिवोट कर दिया, आपको क्या भगवान की प्राप्ति हुई, कोई दर्शन हुए क्या या प्राप्ति हुई?
नहीं, अब ये दूसरा प्रश्न हो गया फिर कि हमें हुई नहीं हुई, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति के भक्त बनने का संबंध है, टाइम कोई फैक्टर नहीं है, डिपेंड करता है आप कितने हद तक भगवान को शरणागत होते हैं। यदि आप आज इस समय 100% शरणागत होते हैं तो हम आपको शास्त्र के गारंटी देते हैं कि आप भगवत धाम जाएंगे। आप तैयार हैं 100% सरेंडर होने के लिए? फिर जब आप तैयार नहीं है तो फिर कैसे हम करते हैं?
हाँ, हाँ जी, नेचुरली कि मैं मान लीजिए आपके संपर्क में हूँ तो मुझे आपसे संपर्क करने से ये लगेगा
हाँ
कि आप मेरे लिए भगवान है, आप जो भी कहेंगे,
हाँ
लेकिन जिस चीज को हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसका हम अनुभव नहीं कर पा रहे,
हाँ जी,
लगाव ना मुश्किल है,
इसलिए उसकी पद्धति है गुरु परंपरा में आकर के।
अच्छा, वो गुरु परंपरा में भी ऐसा है कि आजकल गुरु मिलना भी मुश्किल है।
हाँ, इसलिए मैंने बोला हमारी शुद्ध इच्छा के अनुसार गुरु मिलेंगे, लेकिन हमें भी प्रयास करना है गुरु ढूंढने का। मेरा ये प्रश्न का भी आधा उत्तर ही हुआ था कि भगवान गुरु भेजते हैं, पर दूसरा हमारे तरफ से ही प्रयास होना चाहिए गुरु ढूंढने का। इसके लिए पता होना चाहिए गुरु की परिभाषा क्या है।
जैसे मेरी लाइफ है, मैंने इतने टाइम से, मैंने मुझे याद नहीं कि मैंने कब से शुरू करा।
हाँ जी,
मेरी इच्छा बड़ी आज तक यही है, और मैं बहुत घूमी भटकी यही सोच के कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके सानिध्य में मैं रहूं।
हाँ जी,
मुझे नहीं मिला।
कोई बात नहीं, मिलेगा, चिंता मत कीजिए, भगवान देख रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, भक्ति प्रोसेस में जितना भी आप इस समय तक इस जीवन प्रगति किए हैं वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना भी आपने किया है नेक्स्ट लाइफ में वहीं से शुरू होगा। अगर आपने इस जीवन में 1% आप भगवान की तरफ चले हैं, अगले जीवन में आप 2% से आगे जाएंगे, भौतिक की तरह नहीं। गारंटी शास्त्र है, हमने पढ़ा ना अभी कि शास्त्र अपने आप में प्रूफ है, शास्त्र अपने आप में प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र भगवान के द्वारा दिया गया है। तो क्या भगवान को नहीं पता है कि प्रोसेस क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का? जब भगवान कह रहे हैं कि आप जितनी प्रगति किए हैं, नमाम भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का ही पतन नहीं होता है, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, हे अर्जुन कौन थे प्रतिजनी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का ही पतन नहीं होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ जी, हाँ
जी, नहीं आप, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी तरफ से पूर्ण शरणागत होने का प्रयास कीजिए, फिर जितना भी आप प्रगति कर पाएंगे वो आपके साथ रहेगा। कोई व्यक्ति बढ़ता है, स्टूडेंट, वो फर्स्ट आने का ट्राई करता है तो कम से कम पास तो होता है, तो आप फर्स्ट आने का प्रयास कीजिए, यानी कि पूर्ण शरणागत होने का प्रयास कीजिए, जितना भी आपके पास समय रह गया है। समय तो देखिए, एक मिनट, हमारे पास भी कोई निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं कि हम जवान हैं तो हम कोई आपकी उम्र तक जीने वाले हैं, ऐसा कोई गारंटी तो हमारे पास भी नहीं है ना। हो सकता है कि जितनी आपकी उम्र है उतनी हमारी है ही नहीं, हमारी तो कल भी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए एज क्राइटेरिया नहीं है, हेल्थ क्राइटेरिया नहीं है, आप कितने स्तर तक शरणागत होना चाहते हैं वही क्राइटेरिया है। वो धीरे धीरे, एक ही क्लास में सब नहीं बता सकते ना। धीरे धीरे अभी पहले आप ये 6 सत्र आइए, एक बार समझिए। अच्छा, 6 को जा रहे हैं, यानी कि
एक दो आजकल गुरु भी बहुत मिलते हैं।
एक्चुअली ये हम पूरा एक टॉपिक लेंगे, हम पूरा एक टॉपिक लेंगे। आइए, गुरु को कैसे पहचाने, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि गुरु परंपरा जो आती है और कौन गुरु परंपरा में आने लायक है, तो इसलिए पूरा अगेन साइंस है ये भी। लेकिन पहले पता लगाना पड़ेगा गुरु की परिभाषा क्या है। यदि आपको आप हीरा देखने जा रहे हैं मार्केट में, आपको पता ही नहीं है कि हीरा कैसा होता है, तो आप कैसे हीरा लेंगे कभी आपके सामने? लेकिन हाँ, तो फिर तो धोखा हो जाएगा, ऐसे ही धोखा हो रहा है आज, इसीलिए शास्त्र के पास है।
दूसरे के पास जो कुछ वो कहेगा वो हम मान लेंगे,
शास्त्र में है, शास्त्र में वर्णन है।
हर एक व्यक्ति तो शास्त्र नहीं पढ़ सकता,
लेकिन आप तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए ना।
नहीं, हम तो पढ़ सकते हैं,
बस
समझ भी सकते हैं,
बस।
लेकिन इतना समाज के अंदर इस कदर गुरु, इस कदर पद्धतियां, इस कदर फिलोसफी,
या
अब वो सब आदमी को भटका देती
है। यस, कलयुग का ये बताया गया सिम्टम है, कलयुग में मंद सुमंद मतयो दुर्भाग्या, कि एक तो लोग इतने मंद होंगे किसी में जिज्ञासा ही नहीं होगी शास्त्र को जानने की, आध्यात्मिक रुचि होगी नहीं, पहले तो ये नहीं बता रहा हूं।
सामान्य रूप से ये इच्छा के भगवान क्या है,
हाँ जी,
कौन परवाह करता
है? यस, करेक्ट,
मान लिया भगवान है बस चलने,
या तो नहीं मानते, कोई लिप सर्विस मानते हैं तो भी लिप सर्विस,
हाँ जी,
सही बात। इसलिए बताया गया, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित गति सिद्धये, सिद्धि प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों में से एक आदमी तो इच्छुक होता है। फिर कलयुग में बताया गया है कि इच्छुक ही नहीं होंगे, और जो थोड़े बहुत इच्छुक होंगे उनको पथ भ्रमित करने के लिए अनेक लोग होंगे, क्योंकि उनकी जो इच्छा है वो भ्रमित होने की है। क्यों? वो सस्ता भगवान चाहते हैं, कैसा भगवान चाहते हैं? जो हमारी बीमारियां दूर कर दे, जो हमारे पैसा ला दे, ऐसा गुरु चाहते हैं। इसलिए उनको ऐसे ढोंगी गुरु मिल जाते हैं। यदि हमारे हृदय में, यदि हमें अंदर शुद्ध भगवान को समझने की इच्छा है, डेफिनेटली हमारा संपर्क सही व्यक्ति से, सही गुरु से होगा। इसलिए उन बता रहे हैं भगवान की गति क्या होगी। यस, तो इसलिए भगवान बता रहे
हैं।
लेकिन वही परंपरा चली आ रही है ना, आप उसी परंपरा के माध्यम से समझ सकते हैं ना। नहीं, हमारा प्रचार केवल पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, जन सामान्य के लिए भी है, सबके लिए है। अभी देखिए, अभी हीरा है तो हीरा सब नहीं खरीद सकते ना। आप कहें भाई अरे हम क्या करें, हीरा सब नहीं खरीद पा रहे, तो हीरा नहीं खरीद पाएंगे सब। तो उसी प्रकार से शुद्ध परम सत्य को जानना, भगवान तक पहुंचना, वो दुर्लभ है। तो जिसकी इतनी शुद्ध इच्छा होगी उसको 100% मिलेगा, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है। पर अगर शुद्ध इच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिसके हृदय में, देखिए ये क्रमिक विकास चल रहा है, 84 लाख योनि भ्रमण चल रहा है। आय ए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। एक ब्रह्मांड में घूमते 84 लाख योनियों में किसी भाग्यवान जीव को जब गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है तब उसका तारण होता है। तो जीव सब चल रहे हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार चल रहे हैं। जब वो ब्रह्म जिज्ञासा के स्तर पहुंचते हैं कि हम जानना चाहते हैं, अभी हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बहुत भोग करके देख लिया, जान लिया कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, जब ये निष्कर्ष पहुंचते हैं और फिर शुद्ध इच्छा होती है, चलो अभी भगवान की शरण में जाना है, तब फिर वहां गुरु मिलता है और फिर उनकी शुरू होती है। तो आप सबके बारे में चिंता मत कीजिए, वो भगवान चिंता कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको तो आप प्रोसेस फॉलो कीजिए, आप प्रोसेस को अपनाइए सही से। हाँ जी ठीक है, आप ये भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं? यथारूप ओके। आप इस पुस्तक को पढ़िए, और आप एक्चुअली दुर्भाग्य है कि आप यहाँ नहीं रह पाते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़िए और आपकी जो शंकाएं हैं उनका निवारण कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे मंदिर में जब जब यहाँ हो आप आइए। हमने कहा ना भक्ति सेवा साथ साथ करनी पड़ेगी, तो आप स्वयं भक्ति सेवा साथ साथ कीजिए। आप जल्दी जाने वाले हैं, इसलिए आपको जिसमें बताऊं, एक तो आपको भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा नियमित रूप से, सेकंड आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना होगा। हाँ वो भी ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का नो प्रॉब्लम, लेकिन विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र स्पेशली इस कलयुग के लिए बताया गया है। तो हरे कृष्ण मंत्र का आप जप शुरू करें, जिससे हमारा हृदय शुद्ध होगा। सबसे पहला स्टेप, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अलग होगा, जिससे भगवान जो अपने हृदय में ही हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वो प्रकट होंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे हरे कृष्ण मंत्र कीजिए, भगवदगीता पढ़िए, और जो भी आप खाएं उसे पहले भगवान को अर्पित कीजिए और लें, क्योंकि जो बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खाते हैं, भगवान कहते हैं भगवदगीता में। भोग लगाइए हर चीज को, जो भी खा रहे हैं उसे प्रसाद रूप में ही ग्रहण कीजिए। ये प्रारंभिक है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपनी गृहस्थी में, जो भी करते करते हमेशा भगवान का स्मरण करते रहिए, और जो भी कार्य करें उसका परिणाम भगवान को अर्पित कीजिए। ये जिस्ट में मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ऐसे करते रहेंगे आपका डेफिनेटली प्रगति होगा, और जितना ही प्रगति आप इस बात कर पाएंगे वो आपके साथ रहेगा हमेशा। और कोई प्रश्न?
जी आज के सेशन में तो मैं मतलब अभी तक जो इसके रूप में यही समझे, और अभी और जो आपका चर्चा सुन रहा कि जैसे कि मोदी ने कहा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें सही गुरु कौन है, और जो सही है हमें पूरा जो सही तरीके से जो हुआ हमारे ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, तो मतलब अभी तो खैर फर्स्ट उसमें हमें पहले यही करना पड़ेगा, सबसे पहले हम खुद अपने आप को मान लें कि हम हमें एक आदमी चाहिए जो कोई आए तो सीधे खुद मतलब भगवान कृष्ण या मतलब उनके रूप में कोई प्रतिनिधि
yes.
जो कि एक अथॉरिटी जो आपने एक अथॉरिटी शब्द यूज किया था
yes.
वो अथॉरिटी है
yes.
तो आज हम दो चीजें मतलब हम अभी यहाँ पे ये मान के चलते हैं
बिल्कुल
इस सेशन के लिए
बिल्कुल निचोड़
हाँ निचोड़ कि मैं मतलब हम लोग भक्त हैं और आपको एक अथॉरिटी दिया है अभी
Yes, because I am just trying to speak as it is. ये गुरु का लक्षण है।
तो हम मतलब दो ही शब्द अगला आज अभी छह दिन के लिए मतलब आपने
बिल्कुल
विकास कराएंगे कि हम हैं डेवोटी मतलब भक्त हैं और हमने आपको एज ए अथॉरिटी माना है और आप जो
नहीं मेरे को नहीं
मींस ये मैं सोच रहा हूं
कृष्ण कहना चाहते हैं
हम मैं ये सोच
रहा हूं कि हम अर्जुन की लाइन में लास्ट
अर्जुन के लाइन
में लास्ट की लाइन में आप लेटर
गुरु की लाइन में आप लेटर और अभी हम कोशिश करेंगे जो आप कह रहे हैं और जैसे जैसे हम अर्जुन के नजदीक जाएंगे तो हम उनके मतलब जो गुरु के स्टेजेस में हो सकता है कि हम उस स्टेज के पास पहुंच जाए तो हमें उस गैप को हम मतलब रिड्यूस करेंगे ये मतलब मेरा अपना
बिल्कुल अच्छा
और कोशिश करूंगा यही करूंगा कि मैं मतलब हम लोग कोशिश करें अर्जुन की तरफ जाने के लिए और यदि हम कोशिश करेंगे अर्जुन की तरफ जाने के लिए तो हो सकता है कि आज गुरु के रूप में आपको अथॉरिटी दिया है तो हमें हो सकता है कि धीरे धीरे वो गैप जो है वो नजदीक के गुरु के पास ले जाए और हो सकता है कि यदि हम सही मायने में इसको पूरा ग्रास्प कर लें तो हो सकता है कि हमें वो चीज मिल जाए जिसके लिए हम लोग
और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान का प्रतिनिधि बना रहूँ अपने मन से कुछ ना बोलूँ जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है मैं एज इट इज बोलूँ
आपसे निवेदन करूंगा कि आप हम लोगों को सभी लोगों को यहाँ पे मौजूद हैं उनको ये मतलब बताएं कि हम उस पर कंसंट्रेट कैसे करें
किस चीज पे
इसको पढ़ने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हम इस पर कंसंट्रेशन कैसे करें मतलब कोई टाइम होना चाहिए अप्रोप्रिएट
अच्छा
या कोई ऐसा टाइम होना चाहिए और कैसे करें और एक दिन में कितना करें
अच्छा
क्योंकि हमने कई बार इसको कोशिश किया है तो कंसंट्रेट नहीं हो पाते मतलब शुरू के जैसे कई बार हो गए चार पेज या मतलब उसके करीब जो श्लोक वगैरह है ना तो वो चैप्टर बीच में जो है उतने तक जा पाते हैं तो 25% कह लीजिए लेकिन उसके बाद फिर बीच में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती
एक्चुअली
मन करता है कि बीच का ये वाला पोर्शन देखना कभी ये करना एक कंटिन्यूटी होना चाहिए और वो ग्रास्प हो जाए या फिर हम उतना छोड़ दें उतना ही पढ़ के छोड़ दें और फिर उसको कुछ दिन और इंतजार करें
मतलब ऐसा तो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करेगा कि कितना समय आप देना चाहें समय ऐसा कोई नहीं है कि इस समय पढ़ सकते हैं इस समय नहीं लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ब्रह्म मुहूर्त वो सबसे बेस्ट है ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हाँ जी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त एक मिनट में उनके प्रश्न का उत्तर प्रश्न तो ब्रह्म मुहूर्त में करें तो अच्छा है लेकिन अगर उसमें संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि आजकल क्या है हमारा मॉडर्न लाइफ में ऐसा उल्टा हो गया नाइट डे हो गया डे नाइट हो गया तो इसलिए अभी बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन करना पड़ेगा तो जो भी हमारे पास परिस्थितियां उपलब्ध हैं उसमें रह करके हम जब भी हमको शांत टेंशन के बिना एकांत समय मिले हम बैठ करके उसका अध्ययन शुरू करें उसके नोट्स बना सकते हैं जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उसमें जो हमको समझ में आ रहा है उसको नोट्स बनाएं और जहां भी कन्फ्यूजन हो डाउट आ रहा है वहां पर हम आपकी सेवा में हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे ये तो आज फर्स्ट क्लास है इसमें हम और स्टार्टिंग है पर पूरा जो प्रोसेस है उसको समझ करके जैसे जैसे आप प्रोसेस को अप्लाई करेंगे 100% आप देखेंगे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता की हुई है और अपना रहे हैं